आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। 24 नवंबर से देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संभालेंगे कार्यभार। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के निर्णय से उत्साहित किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया अभिनंदन। किसानों से संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा, खेती और किसानों का हित सरकार का मुख्य एजेंडा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज प्रदेश भर में किया जा रहा है रन फॉर यूनिटी का आयोजन। और मुंबई में खेले गए महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें बधाई देते हुए यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 24 नवंबर से प्रभावी होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के ऐतिहासिक निर्णय से उत्साहित प्रदेश के गन्ना किसानों ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार खेती और किसानों का हित सरकारों के एजेंडे में आया।
ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अन्नदाता किसान खुशहाली की एक नई राह चला है। किसान भी किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है और ईमानदारी से उसको ध्यान में रखकर के शासन की योजनाएं बनेंगी, यह मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हो पाया।
मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2017 से अब तक 8.5 वर्षों में सरकार ने लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली से गन्ना पर्ची व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन हुई और बिचौलियों का राज खत्म हुआ है। अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए किसानों ने कहा कि योगी सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है। इस बीच केंद्रीय युवा कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल बस्ती जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के गन्ना किसान खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आगरा में बन रहे छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संग्रहालय भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक वैभव और वीरता के प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के भवन का निर्माण कार्य जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संग्रहालय केवल इतिहास का स्थिर प्रदर्शन ही नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव भी होना चाहिए, जहां आने वाले दर्शक भारत की गौरव गाथा को महसूस कर सकें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लखनऊ में प्रस्तावित नौसेना शौर्य संग्रहालय की प्रस्तुति का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संग्रहालय को केवल देखने योग्य नहीं बल्कि इस तरह बनाया जाए जहां आने वाले लोग इतिहास को महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय भारतीय नौसेना के अदम्य शौर्य गाथाओं का जीवंत प्रतीक बनेगा। समाचार कक्ष से सुषमा कुकृति।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज अपराह्न बाद एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। वह बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उपराष्ट्रपति सिगरा स्थित नाटकोटाई धर्मशाला का उद्घाटन भी करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कुशनगर के तमकुहीराज क्षेत्र के नारायणी नदी के किनारे चली 4 दिवसीय स्पेस मॉडल रॉकेट्री कैंसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता कल समाप्त हो गई। इस प्रतियोगिता में मुंबई की टीम विजेता रही जबकि गुजरात के द्वारका की टीम उप विजेता बनी। प्रतियोगिता में कुल 70 टीमों ने प्रतिभाग किया। समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि मिशन गगनयान के सदस्य और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला तथा इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था LR कुमार ने कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में सभी कमिश्नरेट, जनपद मुख्यालय और उनके थानों पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये कार्यक्रम थानों के प्रमुख चौराहों या लैंडमार्क से शुरू होंगे। रेस की अवधि सुबह 7 से 10 बजे के बीच 30 मिनट की होगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज से 25 नवंबर तक विविध आयोजन कर रही है। पार्टी द्वारा आज प्रदेश भर में एकता मार्च निकाला जा रहा है। इसी क्रम में 1 से 7 नवंबर के बीच शैक्षणिक संस्थानों में निबंध, भाषण और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 सितंबर को वस्तु और सेवा कर GST दरों में कटौती के साथ GST बचत उत्सव की शुरुआत की थी। इससे पूरे देश के नागरिकों को लाभ हुआ। खाद्य पदार्थों में नई GST दरों से लोगों को मिल रहे लाभ को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
आम आदमी को बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने जरूरी खाद्य पदार्थों पर GST कम कर दिया है। नए कर ढांचे के तहत मक्खन, घी और अन्य डेयरी उत्पादों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। GST में इस कमी से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। फलों और सब्जियों के रस, जैसे फलों के गूदे और सब्जियों के रस पर अब 12% की बजाय 5% GST लगेगा। पैकेज में वाला मांस, सब्जियां और अचार पर भी अब 5% का कर लगेगा। इन सुधारों से कई जरूरी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हुई हैं, जिससे घरेलू खर्च कम हुआ है। नए GST सुधारों से आम लोगों के लिए खाद्य पदार्थ खरीदना आसान हुआ है, दैनिक पोषण सुनिश्चित हुआ है, उपभोग को बढ़ावा मिला है और परिवारों को वित्तीय राहत मिली है। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
मुंबई में खेले गए महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले खेलते हुए भारत को 339 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में भारत की टीम ने 48 ओवर 3 बॉल में 5 विकेट खोकर 341 रन बना लिया। चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
लखनऊ सहित प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कल तेज हवा के साथ दिन भर बारिश होने से तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ फसलों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के भीतर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और भदोही सहित प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
प्रसार भारती संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 67वें आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2 नवंबर से 29 नवंबर तक देश भर के 24 आकाशवाणी केंद्रों में इसका आयोजन होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि वर्ष 1954 में शुरुआत के बाद से आकाशवाणी संगीत सम्मेलन सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करने वाला देश का सर्वाधिक सम्मानित संगीत कार्यक्रम है। बौद्ध धर्म के प्रमुख गुरु और भिक्खु संघ के अध्यक्ष अग्र महापंडित भदंत AB ज्ञानेश्वर महास्थवीर का आज तड़के लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। 24 नवंबर से देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संभालेंगे कार्यभार। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी के निर्णय से उत्साहित किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया अभिनंदन। किसानों से संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा, खेती और किसानों का हित सरकार का मुख्य एजेंडा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज प्रदेश भर में किया जा रहा है रन फॉर यूनिटी का आयोजन। और मुंबई में खेले गए महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।